ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ऐतिहासिक लगातार तीसरा कार्यकाल गति और निरंतरता के लिए जनादेश है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 3 गुना गति से काम करेगी और देश को विकास के अगले स्तर पर ले जाएगी तथा 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 31 लोगों का अलीगढ़, आगरा, एटा और हाथरस के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए गहन जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए आगरा जोन के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। हाथरस जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नम्बर है 0572227041 और 0572227042। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस हादसे की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पीड़ितों और उनके परिजनों से मिलने जिला अस्पताल हाथरस पहुंचे। कल एक सत्संग कार्यक्रम में हुई भगदड़ में कुल 21 लोगों की जान चली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में एआई अनुप्रयोग, शासन प्रणाली और एआई नवाचारों तथा प्रतिभा को बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के साथ विभिन्न सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को बताता है। तेलंगाना सरकार ने 213 कैदियों को माफी दे दी है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के परिजनों की याचिकाओं पर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर उनकी शीघ्र रिहाई की संभावनाओं की जांच करने का आदेश दिया था। श्री रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कैदियों के नामों को मंजूर करते हुए उन्हें रियायत दी। कैदियों के नाम की सूची पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने कल देर शाम माफी देने से संबंधित आदेश जारी किये। आदेश के मुताबिक आज देर रात चिरलापल्ली जेल से 213 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें से 205 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 8 अन्य कैदियों को इससे कम सजा हुई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ चर्चा के दौरान 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया और उसकी सराहना की। श्री त्रिपाठी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने ढाका में जातीय संसद भवन कार्यालय में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों की ओर बढ़ चुका है। सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में बिजली चमकने और गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।